اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
خدا ہماری وفاداری کا امتحان لیتا ہے، وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا شروع کرتا ہے، اور اگر ہم ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے میں وفادار رہیں تو پھر وہ ہمیں ترقی دیتا ہے، اور ہم وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور پھر ہم اس درجے پر آزمائے جائیں گے۔ میں اپنی منسٹری کے پہلے 2.5 برسوں کو دیکھتی ہوں جس میں ہمیں بائبل اسٹڈی کروایا کرتی۔ 26 لوگ ہر منگل کی رات میرے گھر کے ڈرائنگ روم کے فرش پر۔ میں نے اسٹڈی کرنے کے لیے اپنی فل ٹائم ملازمت چھوڑ دی۔ ہر ماہ ہمیں اپنے بلز کی ادائیگی کے لیے کسی معجزے کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے یاد ہے اپنے بچوں کو پرانی چیزوں کی سیل سے جوتے لے کر دیتی۔ ہم نے چند برس بہت مشکل اور تنگ دستی کے دیکھے، اور کچھ عرصے کے بعد کسی نے مجھے ان کے گھر پر بائبل اسٹڈی کروانے کا کہا۔ اس طرح سے میں نے 2.5 برس تک گھر میں بائبل اسٹڈی کروائی۔ لہذا میری منسٹری کے پہلے 5 برس گھروں میں بائبل اسٹڈی کروانے میں گزرے، اور میں ہر پیغام کے لیے 6 سے 7 گھنٹے تک مطالعہ کرتی جو اس وقت مجھے آتے تھے، کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ میں ایک تباہ حال ہوں اور یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں سیکھ رہی تھی اور اس کا اطلاق ہر کسی پر کرتی، یہ سوچ کر کہ کیا یہ دوسروں پر بھی کام کرتا ہے جیسے مجھ پر کرتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اس وقت بھی ایسے ہی منادی کرتی تھی جیسی اب کر رہی ہوں۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پاتی کہ کیوں خدا نے مجھے ان چند لوگوں تک محدود رکھا۔ مجھے یاد ہے جب میں دوسروں کو ٹی وی پر منادی کرتے ہوئے دیکھتی تو سوچتی میں ٹی وی پر کیوں نہیں ہوں، میں تو ان کو دائرے میں بٹھا کر تعلیم دے سکتی ہوں۔ اسی لیے میں اپنے ڈرائنگ روم کے فرش پر تھی، کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا رویہ غلط تھا جسے میں خود ہی درست کر سکتی تھی۔ بجائے حسد کرنے کے کہ دوسرے لوگوں کے پاس کیا ہے، ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ شاید آپ بکری ہیں بھیڑ نہیں، ہم کچھ ہی دیر میں اس پر بات کرنے والے ہیں۔ سنیے، بکریاں بھیڑوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، لیکن بھیڑیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ کاش میں کسی کے پاس بیٹھ کر اسے صحیح طرح سے بتا سکوں کہ شروع کے دن کیسے تھے۔ میں اور ڈیو ہر وقت اس سے متعلق بات کیا کرتے تھے۔ جب ہم کلام سنانے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے کہ کسی ہوٹل میں قیام کر لیں۔ ہم میک ڈونلڈ کی پارکنگ میں کار کھڑی کر کے اس میں سو جاتے تاکہ وہ کار چلا کر تھوڑا اور سفر کرنے کے لائق ہو سکے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس کچھ ہے، حسد کرنا بڑی بے وقوفی کی بات ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب آپ وہ نہیں کرنا چاہتے جو انہوں نے کیا۔ آمین۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ وہ واپس آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداون، تو نے 5 توڑے میرے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ میں متی 5 باب اس کی 21ویں آیت پڑھ رہی ہوں۔ اس کے مالک نے اسے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ یہ بڑا پرجوش حصہ ہے، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ دیکھا، یہ بات اس قدرتی اجر کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہے۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو، اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ خوش رہنا۔ ہر کوئی جو آج شاپنگ کے لیے باہر نکلا ہے، وہ دراصل سچ ہے خوشی خریدنے کی کوشش میں نکلا ہے۔ ہم صرف ایک صورت میں خوش رہ سکتے ہیں، اگر ہم وہ کام کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے، اور اپنی پوری صلاحیت سے کریں، اور دوسروں کے معاملات میں کسی بھی طرح سے دخل نہ دیں۔ آمین۔ आप में कुछ गैर शादीशुदा लड़कियां, काश मेरी शादी हुई होती, और आप में से कुछ शादीशुदा खवातीन, काश मेरी शादी ना हुई होती। आप जानते हैं शादीशुदा होने के कुछ फायदे हैं और गैर शादीशुदा होने के भी हैं। आप जानते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं जो आपका दिल करता है। आपको घर फोन करके किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। हो सकता है जिस कदर आप उसे बुरा समझते हैं उस कदर ना हो। सुनिए, मुद्दत के बाद मालिक वापस आया। 10 कवारियों की तमसील में भी यही मामला है। बहुत मुद्दत के बाद मालिक वापस आया। हमारा काम है कि जो दुरुस्त है वो करते जाएं, जो दुरुस्त है वो करते जाएं, जो दुरुस्त है करते जाएं, जब तक कि आखिरकार वो आ ना जाए। अब सुने, और वो नौकर जिसको एक तोड़ा मिला था वो फौरन खौफजदा हो गया। उसने उसे लिया और उसको दबा दिया। लेकिन जब मालिक वापस आया, मत्ती 25 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। शरीर जी, उसे शरीर कहा क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने उससे कुछ ना कमाया। मैं किसी को खफा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जा रही हूं और मैं 6 माह तक वापस नहीं आऊंगी ताकि मैं थोड़ा वक्त ले सकूं। अगर आप महीने में सिर्फ 1 या 2 बार चर्च आ जाते हैं और आप अपने तोड़ों और सलाहियतों से काम नहीं ले रहे, आप किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, आपके पास किसी और के लिए वक्त नहीं, आप दूसरों की हौसला अफजाई नहीं करते, मदद नहीं करते, आप वो हैं जब किसी को मदद की जरूरत हो। आप जानते हैं अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करते तो फिर क्या मुझे वो कहना चाहिए जो यीशु ने उस नौकर से कहा था, ऐ शरीर और सुस्त नौकर। क्या आप जानते हैं आप खुश नहीं होंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो क्यों खुश नहीं है। बाज़ औकात मुझे बड़ी हैरत होती है कि कैसे इतने सारे मसीही ना खुश रह सकते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि खुदा को भी मुझे ये बात समझानी पड़ी, क्योंकि तू खुदगर्ज है, तू सिर्फ जॉयस मायर की फिक्र करती है, और जब तक तू जॉयस मायर को अपने जहन से नहीं निकालती और इस बात पर तवज्जो नहीं देती कि तू दूसरों के लिए क्या कर सकती है कि उनको खुशी दे। देखा, सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आपको खुशी मिल सकती है कि आप दूसरों की खुशियों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले हिस्से में ज्यादा वक्त लिया। आपको ये बात जल्द समझ लेनी चाहिए। और उसने कहा, देखिए, खुदा से मुतालिक उसका नजरिया गलत था। उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, बस मैं डरा। अगर आप खुदा को जानते हैं तो फिर आपको उससे डरने की जरूरत नहीं। आप बाहर निकलकर कोशिश कर सकते हैं, अगर आप नाकाम होते हैं तो ये एक आम बात है। गुजरी रात हमारा पैगाम था, क्या कोई कल रात यहां था। आप में से कुछ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हैं। जो कुछ आप ले सकते हैं वो आप ले रहे हैं, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, और मैं आपको बताऊंगी कि बेहतरीन रूहानी जंग क्या होती है, और बेहतरीन रूहानी जंग मोहब्बत की जंग है। दो अहम तरीन बातें जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं, ईमान और मोहब्बत। ईमान में मजबूत हो और मोहब्बत में बढ़ते जाओ। और जबूर 37 में बदकिरदारों से मुतालिक लिखा है कि तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। 3 आयत में लिखा है, खुदावन पर तवक्कल करो, नेकी कर। अगर आप इसी बात पर तवज्जा करें तो जिंदगी में शादमानी को हासिल करेंगे। आपको दुनिया में जो हो रहा है उससे मुतालिक फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, और दूसरों से हसद करने की भी जरूरत नहीं। आप शादीशुदा हैं या नहीं, या आपके पास ये है या वो नहीं है, आपको सिर्फ हर रोज सुबह उठकर उस पर भरोसा करने और हर हाल में नेकी करने की जरूरत है। सुनिए, ये बुनियादी मसीहियत आसान है। मेरी जिंदगी के साथ क्या मसला है, कुछ भी हो जाए मैं खुश नहीं रहती, क्या मसला है। मैं सबर शुक्र करने वाली क्यों नहीं। अपनी जात से जरा हटकर सोचें और ये देखना शुरू करें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। भेड़ें और बकरियां, वैसे जिस नौकर ने अपना तोड़ा दबा दिया था, मालिक ने उससे वो ले लिया था और उसको दिया जिसके पास ज्यादा था। इसमें पैगाम यह इस्तेमाल करिए खुदे। आमीन। ठीक है, भेड़े और बकरियां मेरे लिए। इसमें बहुत गहरा गहरा मतलब छुपा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर हम इस बात को गहरे तौर पर समझें, तो जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। बाइबल में दाया हाथ हमेशा कुव्वत की जगह को पेश करता है। यसू आसमानी मुकामों में खुदा के दाएं हाथ पर बैठा है। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे मीरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, या बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सुलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। ओ मेरे खुदाया, खुदा का दीदार क्या ही कमाल बात है। अच्छा, अपने साथ बैठे हुए शख्स की आंखों में देखें, खुदा इंसानों में है। और प्लीज, मैं जो कहने लगी हूं इसे समझें, खुदा इस मामले में बड़ा सख्त है कि हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा है। और मैं आपको बता सकती हूं कि मैं अपने जाती तजुर्बे से इस बात पर यकीन रखती हूं कि खुदा को इससे ज्यादा और कोई चीज रंजीदा नहीं करती जब एक मसीही किसी और के साथ बुरा सुलूक करता है। उन्हें हकीर जानते हैं, तल्ख होते हैं जब उन्हें हम वक्त नहीं देते। आपको मिनिस्ट्री चाहिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को बाकायदा मिनिस्ट्री ना मिले, लेकिन आपके पास मुझसे भी ज्यादा अहम खिदमत हो सकती है जो मैं इस वक्त यहां कर रही हूं। मेरी बेटी, मैं शुक्र करती हूं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की है और हम उनको वैसा ही करते देख रहे हैं। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मुझे लगता है जैसे खुदा मुझे बूढ़े लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और उसने मुझे बताया कि कैसे वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ रही थी जब उसकी मुलाकात एक उम्र रसीदा शख्स से हुई और उसने उससे बातें करना शुरू कर दी और उसे अपनी बिल्ली और दूसरी चीजों के बारे में बताने लगा। और उसने कहा, मैं वाकई अपनी चीजें कार में रखकर घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, मैं जानती थी कि खुदा चाहता कि मैं बस रुक कर उसकी बातें सुनूं। अब अगर आप खुदा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं तो ये तरीका है। मुझे याद है, मुझे मिनिस्ट्री में आए हुए काफी अरसा गुजर गया, मेरी कार पर स्टीकर और यसु नाम की पिन मेरी शर्ट पर होती थी। मैं चर्च स्टाफ में भी शामिल थी, पार्किंग में मेरे नाम से जगह मखसूस थी, चर्च में भी मेरे नाम से मेरी सीट थी और मैं काफी अहम शख्सियत थी। बड़े बड़े लोगों को जानती थी, मैं स्टाफ में शामिल थी। एक दिन मैं एक डॉक्टर के ऑफिस में थी कि एक बुजुर्ग शख्स मुझसे अपनी टांग से मुतालिक बात करना चाह रहा था कि वहां किस लिए आया। वो बातें करता गया अपनी टांग के बारे में और बर्फ से मुतालिक और वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पास मेरी बाइबल थी, मैं किसी काम से वहां थी और फिर मैंने खुदा से कहा कि क्या खुदा तू इसे चुप करा सकता है ताकि मैं बाइबल पढ़ूं और दुआ कर सकूं। मैं वहां बैठकर मजहबी बनकर दिखाना चाहती थी। एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठकर किस कदर मजहबी बाइबल पढ़ते हुए रूहानी दिखाई दे रही थी। मैं आपको बता रही हूं, खुदा ने मुझे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इसकी जगह बिली ग्राहम होता तो क्या तुम वक्त निकाल कर उसे सुनती? ओ हाँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने मेरे लिए कुछ किया हो। इस बुरे शख्स ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कम ऑन। इस तरह मैंने मुश्किल अंदाज में चीजों को सीखा। मैं आपको कोई ऐसी चीज खाने को नहीं दूंगी जो मैंने खुद ना खाई हो। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आपके पास मिनिस्ट्री है, आप में से हर एक के पास खिदमत है। यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास मिनिस्ट्री ना हो, लेकिन हो सकता है आप ऐसी मिनिस्ट्री चाहते हो जहाँ आप जाने पहचाने जाएं और हर तरफ नजर आएं। आपका एक टाइटल हो, लोग आपकी बहुत कदर करते हो, लेकिन आप खुदा की शादमानी से महरूम हो रहे हैं। आप खुदा की खुशी को खो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अकेले में इन छोटी छोटी बातों से अलग नहीं किया जो खुदा ने आपसे कही और शायद कभी किसी को बतानी भी नहीं। वो छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, सुनिए, आप जानते हैं कुछ बहुत अहम होती है। फिर उसने इस बात को बिल्कुल उलट करके कहा, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं कि मैं इन्हें पढ़ूं, लेकिन उसने कहा, जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सुलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। लिहाजा मुझे यूं लगता है कि हम जिस तरह से लोगों के साथ सुलूक करते हैं, खुदा इसको बड़ी संजीदगी से लेता है। और मैं आपको बता सकती हूं, अगर आप आज यहां से निकलकर अपनी बाकी जिंदगी खुदा पर भरोसा करते और नेकी करते हुए गुजारे, निजात कमाने के लिए नहीं, हम खुदा से कुछ भी हासिल करने के लिए अच्छे काम नहीं करते। गौर करें, बल्कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया हम उसके लिए नेकी करते हैं। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें कि वो खुश हो। अब भेड़ और बकरियां फितरतन बहुत मुख्तलिफ होती हैं। बकरियां ज्यादा जहीन होती हैं, लेकिन भेड़ें बहुत प्यारी। आप जानते हैं, मैंने हमेशा कहा कि मुझे वो मुलाजिम अच्छे लगते हैं जिन पर कम तवज्जो देनी पड़ती है। वो लोग जिन्हें टीम का हिस्सा बनाकर रखने के लिए हमेशा कुछ और देने की जरूरत नहीं होती। और मैं कहती हूं कि मुझे कोई भी ऐसा शख्स चाहिए जो बहुत जहीन ना हो लेकिन दिल का अच्छा हो, बजाय इसके कि जो बहुत जहीन हो और उसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो। आमीन। खुदा भी इसी तरह से सोचता है। आइए इसको मिलकर इस तरह से देखते हैं। अब बकरियां ढीठ होती हैं, सारी जिंदगी टकरे मारती रहती हैं। सुनिए, आप भी हमेशा किसी चीज को टकरे मार सकते हैं। बकरियां कहती हैं, मैं, लेकिन भेड़े कहती हैं, बा बा बा। क्या ख्याल है अगर आज हम एक फैसला करें कि हम अपने आप को ज्यादा अच्छे काम करने के लिए तैयार करते हैं, खुदा से कुछ हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि उसने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है जो वो दे सकता था। मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं है, मुझे जरूरत है खुदा मुझे कुछ दे, मैं खुदा को कुछ दूं। और जो चीज उसने मुझे करने के लिए कही वो ये कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूं, खास तौर पर जो दुखी हैं। आमीन। ऐ बाप, मैं यहां पर मौजूद अपने समेत सब लोगों के लिए दुआ करती हूं कि हम मोहब्बत में जबरदस्त अंदाज में चलें, हम उन चीजों का ज्यादा ख्याल करें जिनका ज्यादातर दुनिया नहीं करती, किसी ऐसे से प्यार करें जिससे हमारा किसी भी तरह का मफाद वाबस्ता ना हो, किसी ऐसे के लिए कुछ करने का वक्त निकालें जिसके लिए हम वाकई कुछ करने के लिए वक्त निकालना नहीं चाहते। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूं कि हम अपनी मर्जी के बजाय तेरी हिदायत और रहनुमाई में चलें। मैं ये दुआ यीशु के नाम में मांगती हूं। आज आप यहां हैं और अगर आपने कभी अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी, आज आप मसीह को कबूल करना चाहते हैं, आप मसीही होना चाहते हैं। आप कहेंगी, मैं यीशु की पैरोकार बनना चाहती हूं, हम आपके साथ दुआ करना चाहते हैं। खुदा ने वो पहले ही से कर दिया है जो करने की जरूरत थी, आपको सिर्फ उसे कबूल करना है। आपको उसे कबूल करने के सिवा और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे मैं तो बहुत बुरी हूँ, आप जानते हैं आप खुदा के बगैर जिंदगी में कभी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। खुद को ये सोचकर बदलने की हरगिज कोशिश ना करें कि आप खुद को बदलेंगे तो खुदा आपको कबूल करेगा। आज आप जैसे भी हैं वो आपको कबूल करेगा। आमीन। प्लीज सुनिए, ज्यादा इधर उधर ना घूमें। आप जानते हैं किसी की रूह आप पर इनेसार कर रही है कि आप बिल्कुल ना हिलें। आज आप यहां हैं और कहते हैं मैंने कभी मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी मसीह को देने के लिए तैयार हूं और उसे कबूल करती हूं। या आप कहती हैं एक वक्त था कि मैं जब खुदा की खिदमत करती थी मैं खुदा से फिर गई, मैं दोबारा गुनाह में गिर गई और मैं ताजा मसा चाहती हूं, मैं खुद को दोबारा खुदा के लिए मखसूस करती हूं। आज आप यहां हैं और कहते हैं कि मैं नई पैदाइश का तजर्बा रखती हूं, मैं चर्च जाती हूं लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं निजात याफ्ता हूं या नहीं, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि मैं किसी और के लिए काफी कुछ करती हूं। अगर आप उनमें से हैं मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहती हूं। अपना हाथ उठाइए, बुलंद कीजिए, मुझे देखने दें आप कहां पर हैं। यहां नीचे से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, ठीक है, अब मुझे बहुत से हाथ नजर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, जहां आप हैं खड़े हो जाएं। मैं आपको सामने नहीं लाऊंगी, बस खड़े हो जाएं। आप कहेंगे ओह मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे, क्यों नहीं, कम ऑन, बहुत अच्छे, कम ऑन, यीशु के लिए खड़े हो, आमीन। अगर आज आप यहां खड़े नहीं होंगे तो फिर कभी भी बाहर किसी बात के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाएंगे। यह आपके लिए ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा है। ऊपर वहां बैल्कनी में ऊपर वाले हिस्से में आइए सब मिलकर ये दुआ करते हैं। खुदावन मैं तुझसे प्यार करती हूं, यीशु मैं तुझ पर ईमान रखती हूं कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी, तूने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया, तूने मेरा फिदिया दिया और मैं गुनाहगार हूं और मुझे अपने गुनाहों पर पशेमानी है, मुझे अपनी बुरी जिंदगी पर अफसोस है, मैं उससे फिरना चाहती हूं, मैं तौबा करती हूं, अब मैं अपनी जिंदगी में तेरे पीछे चलना चाहती हूं। ऐ खुदावन यीशु मैं तुझे अपने दिल में कबूल करती हूं, तू मेरा निजात दहिंदा और खुदावंद है, मैं ईमान रखती हूं मेरे गुनाह माफ हुए, तू मुझसे प्यार करता है, मेरी जिंदगी में बहुत काम होने वाला है लेकिन अब मेरा ईमान है तू करेगा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करती हूं, मैं जैसी हूं मुझे ले और कबूल कर और मुझे वो बना जो तू बनाना चाहता है, मैं ईमान रखती हूं मैं निजात पा चुकी, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा मुझसे प्यार करता है, आमीन। आइए खुदा की तारीफ करें।